ओम शांति। एक अनाउंसमेंट है, एक वॉच मिली है किसी की, तो वो हो तो आप पीछे से ले लें। तो अभी हमारे बीच में छाया दीदी और स्नेहा दीदी दोनों ही पहुंचे हैं, और बहुत बहुत थैंक्स आपका, क्योंकि मैं देख रही हूं 3 दिन से कि आप दोनों का बहुत बड़ा योगदान इस कॉन्फ्रेंस में है। तो हमें भी एक हाथ की ताली बहुत अच्छे से बजानी चाहिए कि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। इसके लिए आप दोनों ही बैंगलोर से हैं, और हमारे जो स्पार्क विंग के कोर मेंबर भी हैं आप। बहुत अच्छा आपने बाहर शेड्यूल पढ़ा होगा, उसमें जो स्पार्क के लिए बाप दादा ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो छाया दीदी हमारे साथ वो सब डिस्कस करेंगे, और साथ में स्नेहा बहन है। जो भी हमारी बुक्स हैं स्पार्क की, काफी सारी बुक्स आपने देखी होंगी बाहर स्टॉल पे, तो उस बुक्स को कैसे रीड करें और कैसे उससे हम औरों की सेवा भी करें, तो ये कंटिन्यू सेशंस रहेंगे 4 to 5:30। तो बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन भी होगा, क्योंकि चीजें थ्योरेटिकल में आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कैसे प्लान करना है, इसका हमको दोनों दीदियां हमारे सामने बैठी हैं, वो आप सभी को शेयर करेंगे। तो मैं जब से ये देख रही हूँ, मेरे लिए पहली बार ही है स्पार्क विंग का, तो मुझे बहुत अच्छी दोनों बहनों के लिए लाइनें याद आ रही थी जब से मैं देख रही थी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, ध्यान से सुनिएगा, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, सुहाने वक्त की हर स्पार्क कॉन्फ्रेंस याद आएगी। तलाश करेंगे आपसे बेहतर कोई और दीदी, तलाश करेंगे आपसे बेहतर कोई और दीदी, निगाहें दूर तक जाकर वापस लौट आएंगी, क्योंकि 5 दिन की ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करना, पूरा चलाना, ये बहुत बड़ी अपने आप में ही एक बात होती है। हालांकि दीदी ये नहीं समझेंगे, लेकिन हम ORC में जब ये सब देखते हैं तो हमें पता है कि कैसे पूरी चीजें चलाई जाती हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू हमारी दीदी का जो हमारे साथ बने रहे और कंटिन्यू कब तक बने रहेंगे, 15 तारीख तक। ओम शांति।
ओम शांति। तो सारा श्रेय बाबा को जाता है, और श्रीकांत भाई जो हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, तो ये वन मैन शो बहुत श्रीकांत भाई इसमें उनका योगदान रहा है, तो उनको सारा श्रेय जाएगा। तो हम सब बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं है ना, तो ऐसा ही है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि बहुत कुछ आज दिन तक हमने सुना है, और कल भी क्लास के बाद, डॉक्टर सचिन भाई के क्लास के बाद हम 3 प्रश्न दिए थे, तो हम जानते समय बहुत कम था, इसलिए हम इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तो ज्ञान में जब से आए हैं, तो बचपन के दिन में बहुत जो सुना वो अनुभव करते जाए, नहीं बाबा बहुत मदद करते थे, अनुभव करते बैठ के हमें अपने लिए समय देते, थोड़ा अपने से बातें भी करते, और उसकी गहराई में जाते, उसकी रहस्य रास को समझने के प्रयत्न भी करते। तो धीरे धीरे वो समय कम होता गया, तो सुनते जा रहे हम, सुनते जा रहे, लेकिन बचपन के दिन कभी नहीं भूलना है। तो हम अभी उसी रिफ्लेक्शन को लेकर के कल की जो डॉक्टर सचिन भाई की क्लास थी, तो उसको ही और गहरी रीति से हम मनन चिंतन करेंगे। और उससे पहले हम एक महावाक्य आपको सुनाना चाहते हैं, जो बाबा स्पार्क के लिए भाई बहनों के प्रति उच्चारे थे। तो ये 27 to 1996 की है। ज्ञान सरोवर में स्पार्क मीटिंग के लिए आए हुए भाई बहनों के प्रति, तो सभी रिसर्च करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हर सेकेंड, हर घड़ी हमें याद रखना है कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कदम उठा रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिसर्च है ही। तो अच्छा है, तो जितना अंतर्मुक्ता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छे बहुत टचिंग होंगे। तो अंतर्मुखता क्या है, कमरा क्या है, एक रिसर्च लैब है। तो लैब में हम और हमें जो करना है, ये दो ही चीजें हैं। तो हमें जो रिजल्ट मिलना है उस पर हमारा फोकस होगा, हम और हमारा लक्ष्य होगा। और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है। तो कोई ना कोई अच्छा मक्खन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरेगी। तो हम जो प्रोजेक्ट लिए हैं, जो क्लासेस चले हैं, तो 3 दिन से जो सुन रहे हैं, तो सुने हैं, लेकिन उससे मक्खन भी निकालना है। तो रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हम देखते हैं। क्लास के बाद 3 प्रश्न आपसे पूछे गए। तो पहला प्रश्न था, उस क्लास का सार क्या है। तो रिफ्लेक्ट करेंगे हम, थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्लास में क्या था, क्लास का टॉपिक क्या रहा। तो बाबा ज्ञान एज शॉक अब्सॉर्बर, राइट। तो सचिन भाई का क्लास था, तो उसमें कौन से झटके लगते हैं वो भी वो सुना दिए हैं। बहुत हमने अनुभव भी किए हैं और आगे ऐसे झटके अनुभव भी करने वाला है, राइट। तो उसके बाद उन्होंने हर इसके लिए समाधान भी सुनाए, क्या करने का है, सारे दिन में कौन से स्वमान का अभ्यास करना है, फिर हर इसके लिए शॉक के लिए, हर झटके के लिए हर एक समाधान बहुत सुंदर सुनाए। तो हम पहला क्वेश्चन लेंगे। जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे आपके सामने एक मिरर है, दर्पण है, राइट। तो मिरर जैसे आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, वही आपको रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो उसकी विशेषता क्या है, रिफ्लेक्ट करना। तो हम जो सोच रहे, मनन कर रहे हैं, तो मिरर हमारे अंदर ही है। मन बुद्धि, मन बुद्धि, इन दोनों की संभाषण चलती है। तो वो दर्पण हमारे अंदर ही है। तो जब रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं, तो सोचे कि वो रिफाइननेस बुद्धि से मेरे मुझे वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो गुह्यता, वो राज जो है वापस मेरे मन को टच कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज हमको करना है। तो पहला जो प्रश्न था, उस क्लास का सार क्या है। सार मतलब जैसे बाबा 4 पेज की मुरली सुनाते, उसमें सार बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, सारे मुरली का रहस्य, सीक्रेट उसमें होता है, ठीक है। तो हम अभी 2-3 मिनट के लिए आप इधर उधर नहीं देखेंगे, जो आए हैं आए, गए, जाने वाले जाएंगे, लेट पहुंचने वाले पहुंचेंगे, आजू बाजू नहीं देखेंगे हम। और अभी हमारा रिसर्च लैब, हम एक रिसर्च लैब कमरे में बैठे हैं, हम अकेले हैं, ठीक। तो अभी उस सेशन का सार सोचिए, जिस्ट क्या था, सार क्या था। बताना नहीं है, हाँ, आपको लिखना है। तो सार में क्या होता है, पूरे सेशन का जो हाँ पूरा एसेंस होता है, पूरे सेशन का एसेंस कहो या रस कहो, वो है उसमें। अनुभव करें कि हम डीप साइलेंस में मन भूते को एकाग्र करते हुए अंतर्मुखता के कमरे में है। ये साउंड प्रूफ कमरा है, बाहर की कोई आवाज किसी का आना जाना कुछ भी दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता है। अपने मन में सारे पॉइंट्स रिवाइज करते जाओ। अंत में मुझे उसका सार पकड़ में आएगा। हम अभी नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे। आप सभी लिखिए उसी अनुभव से, उस सेशन का सार लिखिए। मुझे बहुत पॉइंट्स समाधान के मिले। बहुत झटके अनुभव भी किए होंगे, लेकिन कौन सा बाबा का पॉइंट? मैं अपना संस्कार बनाना चाहती हूँ। कौन सा पॉइंट समाधान उन्होंने सुनाया, अपना संस्कार बनाना चाहती हूँ। आप चाहे तो अपने पॉइंट्स को जो नोट किए हैं देख लीजिए, रिवाइज कीजिए। कौन से पॉइंट्स उन्होंने सुनाया, ड्रामा के, स्वमान के? कौन से संस्कार मैं बनाना चाहती हूँ, किस पॉइंट से मैं स्ट्रांग रहना चाहती हूँ? कोई भी सुनाए नहीं, नोट करते जाएं। अपने मन को चेक कीजिए, ये संकल्प इधर उधर तो नहीं भाग रहे। क्या मेरा मन कल जो सुने हैं उसी में है या दूसरे संकल्प आ रहे हैं? अपने से बातें करें, मैंने कल क्या सुना, मन में संकल्प आ रहे हैं? और एक पॉइंट पकड़ में आया, उसी को मैं, उसी ज्ञान के पॉइंट को मैं अपना संस्कार बना दूं। अभी हम तीसरे एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे। तीसरे एक्सपेरिमेंट पर हम जा रहे हैं। ये बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट मेरे लिए है। जो मैंने संस्कार बनाया है वापस जाने के बाद अन्य आत्माओं को मैं कैसे प्रेरणा दूं? कैसे दूसरी आत्माओं को इन्फ्लुएंस करूं इस संस्कार से? हम एक मिनट लेना चाहते हैं, बहुत करके जब भी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये अभ्यास थोड़ा कम होगा। कहीं भी कर भी रहे होंगे लेकिन थोड़ा हम अंदर झांक करके देखें, अपने से प्रश्न पूछते रहे, तो मुझे ये पॉइंट्स मिले, ये समाधान मिले हैं, तो इसको मैंने यूज किया ठीक से हो गया, कम यूज किया इसका रिजल्ट ये हुआ, अभी मुझे ये पॉइंट संस्कार बनाने में मेरा पुरुषार्थ गुप्त क्या होगा, इस सेकेंड का गुप्त पुरुषार्थ क्या होगा? अपने में अपने से प्रश्न पूछे। इसके लिए मैं क्या गुप्त पुरुषार्थ करूं, क्यों करूं? इससे अनेकों को क्या सीख मिलेंगे? शांति। कितने कर पा रहे हैं? थोड़ा मुश्किल लग रहा है? कितने कर पा रहे हैं? बहुत इजी लग रहा है, हाथ उठाए, वेरी गुड। और बाकी उनको टाइम चाहिए, ऐसा है, कर पा रहे हैं। तो जब हम कर पा रहे हैं तो सहज हम वो संस्कार बना रहे हैं। थोड़ा यहाँ वहाँ अटक है तो वो भी संस्कार बन रहा है। तो यहाँ पर जब हम समय लेकर के हमारी जिम्मेवारियां सब छोड़ करके आए हैं, तो 3-4 दिन का जो समय मिलता है हमें कुछ भर कर ही जाना है। क्यों? क्यों? क्योंकि वापस जाने के बाद हम वही रूटीन में रहेंगे। सुनना जाना, सुनना जाना, हर एक से ही होता है ना, तो एक ड्यूटी बच जाते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए यहाँ से ही हमें भरना है, यहाँ से ही हमको संस्कार बना के जाना है। तो थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो बाबा टचिंग दे देंगे, मदद बहुत दे देंगे। क्योंकि जब भी हम बैठ करके अपने से बातें करें, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो मुझे क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या बनना है, वो स्पष्ट क्लियर होता जाएगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक वो स्पष्टता हमारे मन में नहीं आएंगे। तो इसीलिए थोड़ा टाइम, 2-3 मिनट फिर रिफ्लेक्ट कीजिए। ओम शांति। स्पार्क के प्रति अव्यक्त बाप दादा की शुभ आशाएं एवं शिक्षाएं। हम दूसरा पढ़ना चाहते हैं, तो इसको आप सेशन के बाद भी जारी रखें। जब भी हमें फ्री टाइम मिले, हालांकि यहाँ वहाँ बोर्ड लगा हुआ है साइलेंस प्लीज, फिर भी हम बाहर मुक्ता में आते, जितना आते हैं उतना अंतर मुक्ता में भी जाना है, ठीक है? वैसे तो हम सबको साइलेंस में रहना है, लेकिन अगर कारोबार या और कुछ पूछताछ के लिए बात करनी भी हो, उतना ही हमें साइलेंस अंतर मुक्ता में भी जाना पड़ेगा। इस खोज में ही हमारे अंदर नवीनता आएंगी, क्रिएटिविटी आएंगी। तो क्रिएटिविटी, रचनात्मकता जो अंदर है, तो वो तो हिडन है। तो जब हम विचार सागर मंथन करके रिफ्लेक्ट करके अपना बनाएंगे, तब हमारे अंदर वो नवीनता क्रिएटिविटी बाहर आएगा। तो अभी हम देखेंगे बाप दादा जो डायरेक्ट 2000 में स्पार्क के भाई बहनों के प्रति जो महावाक्य उच्चारे हैं, तो बाप दादा का हम सुनेंगे।
ओम शांति। ये 1996 की क्लिपिंग है और व्यक्ति बाप दादा से स्पार्क रूप मिल रहा है। आप देख रहे हैं स्टेज के ऊपर कितने लोग हैं? स्पार्क रूप कितने हैं? माना गिने चुने है ना, बहुत कम। अभी हम कितने हैं? अभी हम कितने हैं? 400 कम है। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से श्रीकांत भाई जी बोलेंगे कितने? 600 700। तो इतना छोटा सा ग्रुप था, इतनी छोटी सी ग्रुप से शुरुआत हुई। बाबा इस छोटे से ग्रुप को बाबा ने प्रेरणा दिया, तो शुरुआत में इस छोटी सी ग्रुप ने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत काफी सारे पुराने हैं जो अब तक जुड़े हुए हैं, काफी योगदान रहा। बाद में हम सब जुड़ते गए है ना, तो आज इतना विस्तार हम देख रहे हैं। तो अगर इस छोटा सा ग्रुप बाप दादा की आशाओं को साकार करने में इतना हम कर सकते हैं, अभी 4300 मेंबर्स है। चलो वो सभी नहीं आ पाए, 700 तो आ पाए, 600 तो आ पाए। अगर वो इतना छोटा सा ग्रुप बाबा की आशाओं को साकार करने में इतना मेहनत करके इतना कुछ कर सकता है, तो हम 600 लोग 700 लोग मिल जाएंगे, ठान लेंगे, तो फिर क्या कर सकते? फ्लेम क्या ज्वाला बन सकता है? बोल रहे कर सकते हैं ना। तो अभी हम ध्यान से सुनेंगे बाबा ने 96 में स्पार्क के प्रति हमारे लिए क्या प्रेरणाएं दिया है। स्पेस बार शांति भवन में है।
बता देंगे आपने सुना वो बता।
सबसे पहले चाय बहन ने जो पढ़ा वो 96 की ही मुरली थी। सभी ने ध्यान से सुना? सुना? देखो इसका लिखत मिल सकता है, लेकिन सभी ने ध्यान से सुना नहीं ना। दोबारा पढ़ते हैं, अभी देखते हैं। हाँ, सबको दिया गया है। अच्छा, कितनों के पास है? सबके पास है। कितनों ने पढ़ा? पूरा नहीं, उतना ही है, इतना ही बोला है स्पार्क को। पूरा मुरली थोड़े उसमें देंगे। हाँ, जितना स्पार्क को बोला है उतना ही दिया है। कितनों को याद है? चलो थोड़े लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन कितनों को याद है? पांच लोग। चलिए आपके लिए दोबारा पढ़ लेते हैं, एक बार चाय दीदी ने पढ़ा, अभी दोबारा हम पढ़ लेते हैं। सभी रिसर्च करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा है, जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होंगी, और इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। तो अच्छा है, करते रहो, लेकिन प्रयोग और योग दोनों का बैलेंस रखते आगे बढ़ते चलो। बाकी अच्छा है, जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलता है, तो कोई ना कोई अच्छा मक्खन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरे। तो क्लियर उसमें क्या डायरेक्शन है बाबा का? व्हाट इज द डायरेक्शन इन दिस फोर लाइंस? अंतर्मुखता के कमरे में बैठना है, तभी टचिंग्स मिलेंगे। उस टचिंग्स के आधार से जो हम मनन करके मक्खन निकालेंगे, मना द एसेंस व्हाट वी गेट, मक्खन इज द एसेंस, है ना? तो वो एसेंस सबको क्या देगा? शक्तिशाली बनाएगा। तो हमारा काम क्या है? अब उसको प्रयोग भी करना है, पहले खुद में प्रयोग करना है। तो कुछ क्लिपिंग्स यहाँ पे है, सभी हम नहीं देख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ बाप दादा का क्लिपिंग्स जो है स्पार्क के प्रति वो दिखाएंगे, क्योंकि बाबा की आवाज में हम सुनेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें बल है ना, उस आवाज में ही इतनी ताकत है। ...2002 का क्लिप में प्ले कर रही हूँ। डबल क्लिक। वॉइस इतना नहीं आ रहा है, नहीं आएगा भैया? और थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं?
रोक देगा। ठीक है ना? ये निमित्त है ना? अच्छा बाप दादा अभी भी
ये 2002 की मुरली है। इसमें क्या था एक खास पॉइंट, बाबा को पता है हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसलिए बाबा ने बोला सिर्फ पॉइंट्स मत निकालो, है ना? काफी सारे किताबें जो हमारे पास वो भी अच्छी है, क्योंकि इतनी बिजी शेड्यूल में हम लोग रिवाइज नहीं कर पा रहे 69 से अब तक की मुरली। हम में से कितने लोग हैं एटलीस्ट एक बारी पढ़ा है 69 से अब तक की सारी मुरली एटलीस्ट वन टाइम? ऐसे नहीं जैसे एबीसीडी पढ़ रहे, ऐसे नहीं, ध्यान से। मैंने तो नहीं पढ़ा है। सो बिजी शेड्यूल में ऐसे भी निकाल के देते ये भी अच्छी बात है, लेकिन ये फर्स्ट लेवल है। तो व्हाट बाबा वाज सेइंग, सिर्फ पॉइंट्स मत निकालो, क्या करो? वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स बाबा सेड। सबसे पहले तो तुम्हारा ये काम है, देन ही सेड मना वातावरण बनाना, वायुमंडल बनाना। तो उसको किस किस लेवल में कर सकते वो भी सोचो, ही सेड, है ना? देन ही सेड उसको करने में क्या रुकावट आती है वो भी, उसका भी विचार करके उसको भी लिखो, है ना? सो एवरी पॉसिबल लेवल बाबा इज आस्किंग अस टू वर्क। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को फिर ये बताएंगे तो उनको इजी होगा, अच्छा इसको करने में ये दिक्कत होगा, ऐसे आएगा, सो वो और सावधान रहेंगे, तो उसको इजी हो जाएगा, है ना? सो कितने अच्छी बातें बाबा ने उसमें कहा। और विशेष बाबा ने बोला क्या करना है हमें, वायुमंडल बनानी है। तो आज भी जो प्रोजेक्ट्स में बात चल रही थी उसमें सूरज भाई जी ने एक ये पॉइंट कहा कि हमें सेंटरों की वातावरण ऐसे बनाना है, वायुमंडल ऐसे बनाना है, घरों का वायुमंडल ऐसे बनाना है कि बाहर से जो भी आते हैं वो बोले, भले वो ज्ञान लेने में ताकतवर नहीं है, योग नहीं कर पा रहा है, ज्ञान उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही उस वातावरण में आता है उसको लगना चाहिए क्या मैं यहाँ पे 10 मिनट बैठ सकता हूँ आपके घर में, यहाँ पे मैं 10 मिनट रिलैक्स हो सकता हूँ। तो ये वातावरण हमें बनाना है और ये पालना है, ये भाई जी बोल रहे थे। तो बाबा भी हमें बोल रहे क्या करना है, क्या करना है और कैसे बनाना है, वो भी बाबा हमें बता रहे किस किस विधि से बन सकता है। भले उसकी गहराई बाबा ने नहीं बोला, वो सोचना हमारा काम है, बाबा ने तो डायरेक्शन दिया, है ना? सबके पास ये है ना, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि सारी क्लिपिंग्स हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा हो जाता है डोज, थोड़ा सा ही हम सुनेंगे। फिर आज रिफ्लेक्शन है ना, तो उसके ऊपर सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितना कर पा रहे और कितना करना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या प्लान बनाए अपने लिए, है ना।
ओम शांति। तो इसमें बाबा कहते अच्छा है, बहुत अच्छा है, अभी इसी विषय पर रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठते श्रेष्ठ बना सकते हैं, रिसर्च कर रहे हो ना, तो ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह प्रैक्टिकल अनुभव देखने चाहते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आए, अभी प्लान बनाने में क्या क्या अड़चन आए वो भी लिख लेने का है। यह अनुभव प्रैक्टिकल में करके देखो, सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, जैसे ये पॉइंट कहा उन्होंने, ये पॉइंट कहा, वो पॉइंट कहा, तो हम नोट करके रिपीट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने में क्या अड़चन है, विघ्न क्या है, उसको कैसे मैंने हटाया। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकलना, यह करना है, नहीं करो, बाबा कहते जो पॉइंट है उसको कर दो, डू इट, अनुभव करके एग्जाम्पल बन करके दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा, ठीक है ना। यह निमित्त है ना, अच्छा है, बाप दादा अभी भी 15 दिन पढ़ा है ना, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया लेकिन थोड़ा रहा है, तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ, ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा, अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छा अच्छा है। बाबा क्या चाहते, अभी पॉइंट्स नहीं निकालना है, तो बहुत गया, अभी बहुत समय कम है, इसीलिए जो है जो मन में आया कर देने का है, प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बन जाने का है, ठीक है।
तो हम जब भी आते हैं मीटिंग के लिए या फिर बाप दादा मिलन के लिए भी, अभी तो बहुत कुछ इंटरनेट में भी मिलता है, तो काफी हम कनरस में है, ये सुनना है, वो सुनना है, ये क्या है, वो क्या है, चाहे वो बाबा का ज्ञान ही हो, हम सुनने में मजा लेते हैं, कितनी अच्छी पॉइंट है, कितनी अच्छी बातें बताई, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल में उसको लाते नहीं है, प्रयोग में नहीं लाते हैं, ना उसका ताकत हमें अनुभव होता है, ना उसको लाने में क्या प्रॉब्लम होती है वो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी उसको मैंने प्रयोग में लाके किया नहीं। तो कल शिल्पा बहन बोल रहे थे अनुरूप भाई जी के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे ही उन्होंने सुना प्रयोग में लाना है तो तुरंत उन्होंने हर चीज की शुरू कर दी प्रयोग, मना उन्होंने देखा, मैंने तो कभी मना अमृत वेले हमने तो कभी इतने जल्दी उठे नहीं थे, चलो देखते हैं भगवान हमें उठाता है कि नहीं, है ना। तो ये भी एक क्या है, प्रयोग भी तो संकल्प है ना, प्रयोग करना सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, संकल्प से। तो हम प्रयोग नहीं कर रहे, मना संकल्प भी नहीं कर रहे हैं कि हमें करना है, ऐसा है या करके देखे, ऐसे संकल्प भी नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला चलो देखते भगवान हमें उठाते या नहीं, कितनी अच्छी है, तो एक संकल्प ही उन्होंने किया है ना, तो उनको ये अनुभव हुआ कि सच में क्या करते भगवान उठाते। तो जो भी ज्ञान की बातें हैं उसको प्रयोग में लाना मना एटलीस्ट संकल्प तक लाना, उसके बाद ही हम कर्म में वाणी में ला सकेंगे, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं आप सबके पास, पूरा ही ये स्पार्क के बारे में जो जो बाबा ने बोला है सब कुछ है। लेकिन हम सभी आशा करते हैं इंक्लूडिंग मी कि इस बार जिन जिन्होंने हम सब ने मीटिंग अटेंड किया, ये सिर्फ बातें सुन के अच्छा लग रहा है ये लेके अच्छा फीलिंग लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक दृढ़ संकल्प करेंगे जो हमने सीखा है वो यहां से ही हम प्रयोग शुरू करके, है ना, यहां से ही शुरू करेंगे और उसको कायम रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और जब हम वापस आएंगे तो हर एक प्रोजेक्ट में जो जो चीजें चल रही है उसको साकार में करके हर लेवल में उससे क्या लाभ हुआ, उसमें क्या डिफिकल्टीज हुई सब निकालेंगे। और कितनी अच्छी अच्छी होमवर्क्स बाबा ने दिया, सब चीजें अगर आप देखेंगे एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे आप पालना की बातें कहो, चाहे मन की बातें कहो या फिर दुआओं की, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और जैसे बोलते हम जो सोचते हैं वही चीज हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज देयर इन योर माइंड इज व्हाट यू आर एबल टू सी, है ना। जब से ये मीटिंग चालू हुआ आप देख रहे हैं मुरलियों में भी बाबा कुछ ना कुछ इन चीजों का, मुरलियों में भी कुछ ना कुछ आ रहा है, आ रहा है ना, चाहे वो वरदान में हो, स्लोगन में हो, मुरली में हो, या फिर दादी जी ने कुछ कहा न्यारे और प्यारे का, सुना सबने। जैसे मैं सोच रही थी न्यारे और प्यारे का टॉपिक है, दादी जी कुछ न्यारे और प्यारे के बारे में बोल रहे थे, नेक्स्ट डे मुरली में भी वो न्यारा और प्यारा का पॉइंट आ गया। तो इससे क्या हमें महसूस होता है कि जो हम संकल्प कर रहे हैं बाबा कितना अच्छा, उसका हम सही मार्ग पर है, इसका बाबा हमें टचिंग दे रहे, आप सही ट्रैक पर हो बच्चे, इसलिए बाबा भी क्या कर रहे मदद कर रहे हैं। तो हमें उसको बढ़ाना है ना, यही बाबा की आश है। दूसरा क्लिपिंग देखेंगे अभी। आवाज थोड़ा बड़ा है। आपके पास लिखित में है, किसी को चाहिए तो ये क्लिपिंग्स आपके पास पेन ड्राइव में है तो श्रीकांत भाई आपको दे सकते हैं वीडियो भी। तो जब भी आपको रिवाइज करनी हो, पढ़ने से अच्छा है वो क्लिप आप देखेंगे तो और भी ज्यादा प्रेरणा मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट बाबा का सुन रहे तो काफी अच्छा लगता है ना। तो इस बारी हम क्या करेंगे, नयापन, क्योंकि भाई साहब को भी हर बारी नवीनता पसंद आती थी, है ना। तो इस बारी मीटिंग का नवीनता क्या होगा? हाँ, माना सिर्फ सुन के नहीं जाएंगे लेकिन इस बारी करके ही दिखाएंगे, खुद प्रयोग करेंगे, अनुभव करेंगे और दूसरों को मक्कर निकाल के देंगे, है ना। ये अपने आप में हमें दृढ़ संकल्प करना है, अपने आप में हमें प्रतिज्ञा करनी है। और भाई साहब की एक और इच्छा थी कि हर एक सेंटर में लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना। क्या लगता है सभी को, लाइब्रेरी होनी चाहिए सेंटर में हो या बाबा के बच्चों के घर में भी? कुछ किताबें होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। कितनों के पास, छोड़िए सेंटरों में तो होंगे, कितनों के पास सारी अव्यक्त मुरली की सेट है, सभी मुरली की, अव्यक्त मुरली की सेट है, आधे भी नहीं है। 69 से अब तक सारे मुरली की सेट, आधे भी नहीं है। हाँ, तो हम सभी स्पार्कलर है, तो हम सभी गॉडली स्टूडेंट भी है ना। स्टूडेंट के पास सिलेबस की टेक्स्ट बुक्स ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अभी हो जाएगी। और काफी भाषाओं में भी उसका बाबा की मुरलियों का ट्रांसलेशन होके भी प्रिंट हुआ है, हुआ है ना? हुआ है नहीं हुआ है? अभी तक कनाडा में नहीं हुआ है ये मुझे पता है, बाकी लैंग्वेजेस का मुझे नहीं पता। आई थिंक तेलुगु में हुआ है, तमिल में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में भी हुआ है, मराठी में हुआ है? शांताराम भाई नहीं हुआ है, क्योंकि सबको हिंदी आती है इसलिए, सबको हिंदी आती है इसलिए। लेकिन अव्यक्त मुरली एक ऐसी चीज है जो हर एक ब्राह्मण बच्चे के पास होनी चाहिए, पूरी ही सेट, क्योंकि हम भगवान के बच्चे के साथ साथ क्या है, स्टूडेंट भी है, गॉडली स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के पास सबसे पहली होनी चाहिए अव्यक्त मुरलियों की सेट। तो मुझे याद है एक बार दादी प्रकाशमणि जी जब थे टीचरों के क्लास में, उन्होंने हाथ उठवाया था कि एक तो अव्यक्त मुरली, दूसरा उन्होंने पूछा जितने भी जगदीश भाई के किताब है सारे किताब कितनों ने पढ़ा है, ऐसे हाथ उठवाया था उन्होंने। तो ये यही चीजें हैं जो बेसिक फाउंडेशन है हमारे इस स्टूडेंट लाइफ के, है ना। तो क्यों हम ये लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो हम ध्यान में नहीं देते हैं, हम वही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, कोच करते रहते हैं इसके आंसर्स क्या है, लेकिन हम ध्यान से मुरलियां पढ़ेंगे या फिर बड़ों की जो क्लासेस है, जैसे आजकल हमारे सेंटर में 94 की जो जानकी दादी जी की क्लासेस है उसका रिवीजन कर रहे हैं, हम शाम को पढ़ रहे हैं, जो जो सिंपल क्वेश्चंस हम पूछते हैं उसका सारा उस क्लासेस में आंसर है, है ना। जो अभी शायद वो क्लासेस ऑडियो मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, ढूंढने से मिल भी जाएंगे, लेकिन वो किताबों में पब्लिश्ड है, ज्ञान सुमन हो, ज्ञान सुधा हो, ऐसे बड़े बड़े जितने भी जिनकी भी क्लासेस है उसकी किताब है, उसमें सब कुछ है। और बार बार हम वही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, अशरीरी क्या है, विदेही क्या है, देहाभिमान क्या है, उसमें सब कुछ था। तो मैं सोचती थी अरे पहले तो यही सवाल मैं जाके एक बार जयंती बहन जी से पूछा कि कुछ चीजें हैं, अभी तो दादियां इतने विस्तार से क्लास नहीं करते हैं, तो उनका चेंज हो गया है, है ना। तो दादी सिंपल वे में बताते हैं, हम सबको बाबा के याद दिलाते हैं, हम सभी कौन हैं, हम किसके बच्चे हैं, तो वो नशा चढ़ाते हैं। लेकिन पहले के क्लासेस में बहुत सारा ज्ञान का स्पष्टीकरण होता था, कुछ राज ऐसे बताते थे। तो मैंने दीदी से पूछा, दीदी ऐसे कुछ सवाल है तो फिर हमें जवाब कहाँ से मिलेगा? तो दीदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं जिसका दादी ने कभी आंसर ना दिया हो, होगा तुम्हें ढूंढने की जरूरत है, पुराने क्लासेस में जाओ उसमें मिल जाएंगे, ऐसे उन्होंने कहा, है ना। कितने लोगों ने पढ़ा होगा दादी का क्लासेस, या अभी भी पत्र पुष्पा में उसकी रिविजन होती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बड़ों ने क्लियर किया है, जो हमें डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है बाबा का, लेकिन उन्होंने उसको रिफाइन तरीके से हमारे सामने रखा है। बस देर किस बात की है कि हमें उसको ढूंढना है और उसको पढ़ना है। तो क्यों ये लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हम स्टूडेंट है, दूसरा काफी जगहों में ऐसे है कि काफी सारे भाई बहने हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, या फिर टाइम नहीं मिलता है, या फिर उनको आदत नहीं है पढ़ने की। बुक रीडिंग इज ऑल्सो अ हैबिट, हैबिट है ना, सबको इंटरेस्ट नहीं लगता है किताबें पढ़ने में, सभी को इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन एक ऐसी आदत है कि वो हमारी लोनलीनेस को मिटा सकता है। काफी सारे मैं भाई बहनों को देखती हूँ, फिर मेरा विचार आता है कि जब वो अकेले रहते हैं घरों में, बच्चे जो होते हैं वो अब्रॉड रहते हैं या कामकाज में जाते हैं, अकेले रहते हैं। चलो अभी तो साधन बहुत है, पीस ऑफ माइंड चैनल है या फिर इंटरनेट है या फिर फोन में भी वो क्लासेस सुन सकते हैं, लेकिन पहले इतने साधन नहीं थे और आगे जाकर भी ये काम करता है इसका कोई गारंटी नहीं है, है ना, कि पावर की कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन किसकी गारंटी है? जो किताब हमारे पास है उसकी गारंटी है, हम कभी भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन सभी को आदत नहीं है। मैंने देखा है, ये मेरी एक्सपीरियंस है, कि बहुत सारी माताएं जब अकेले हो जाते हैं, बच्चे भी दूर दूर चले जाते हैं, दे फील वेरी लोनली। सो आई कीप टेलिंग, अभी आप अभ्यास करेंगे तो नहीं होगा, पहले से ही आपको ये आदत होनी चाहिए किताबें पढ़ने की, बाबा की किताबें ही सही पढ़ने की। क्योंकि आफ्टर एन एज, शरीर का उम्र हो जाता है तो हम फिजिकल सेवाएं ज्यादा कर नहीं पाएंगे। चलो हम करते थे, लेकिन ये बॉडी अभी सपोर्ट नहीं करता है, ज्यादा फिजिकल सेवा सेंटर में नहीं हो सकता है, घर में भी बैठ के फिर क्या करेंगे, है ना, फिर बुद्धि और विचारों में चलता रहता है। इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पहले से ही आदत होनी चाहिए, बाबा की जो भी मुरली हो, क्लासेस हो, कुछ भी हो, बाबा की किताबों को पढ़ने की जो आदत है ना, वो कभी हमें वो लोनली फीलिंग नहीं आएगी। ये भी एक मैंने देखा है, काफी सारी भाई बहने बैंगलोर में मैंने देखा, जिसको ये किताबें पढ़ने की इंटरेस्ट है, वो कभी कंप्लेन नहीं करती है कि आई एम फीलिंग लोनली, आप अकेले रहते हो, कैसे रहते हो। अरे बहन जी कुछ नहीं, हम तो मुरली पढ़ते हैं, सुबह क्लास में आते हैं, शाम को क्लास में जाते हैं और पूरा दिन मुरली पढ़ते, बाबा के क्लासेस सुनते और हमारा दिन कट जाता है, वी फील नाइस। लेकिन पढ़ते नहीं है तो फिर क्या करें, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे उनको हम इन्वॉल्व करें। ये बुक रीडिंग कॉन्सेप्ट इस बारे हमने क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास भगवान तो ज्ञान सागर है ना, वो सागर को जितना भी हम किताबों में नहीं भर सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे आज श्रीकांत भाई जी बोल रहे थे, स्पार्क में 350 किताबें छपी हुई है, आप लिटरेचर में सोचो कितने छपी हुई होगी, हजारों, है ना, हजारों छपी हुई होंगे, तो इतना भंडार है। तो फिर चलो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन या फिर दूसरे पढ़ नहीं सकते, हम कैसे उनकी मदद करें। ये बुक रीडिंग एक ऐसी चीज है जो हम ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, सेंट्रो में इसकी एक हैबिट हम डाल सकते हैं, जैसे इट इज अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, वी हैव अ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी पसंद की किताब, जो भी टॉपिक उनको चाहिए वो उठाते हैं, फिर वहां बैठ के पढ़ते हैं या फिर ले जाते हैं। और आजकल बुक रीडिंग सेशंस लाइब्रेरी में होते हैं, आपने कभी सुना है बुक रीडिंग सेशंस होते हैं, शहरों में तो होते हैं, किसी ने सुना है बुक रीडिंग सेशंस होते हैं? बैंगलोर में लगभग सभी बड़े बड़े बुक स्टोर्स में बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये बुक रीडिंग सेशन क्या होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, ऑडियंस को बुलाते हैं, कोई बुक की लॉन्चिंग होती है कि उस किताब के ऑथर को बुलाते हैं, एंड ही विल रीड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द बुक, जिस्ट ऑफ द बुक, ही इज प्रेजेंटिंग हिज बुक। जैसे उन्होंने एक किताब लिखा तो ऑथर आएगा, कुछ ऑडियंस जो लाइब्रेरी में है वो लोग वहां बैठते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, तो वो ऑथर क्या करता है कि किस बारे में है ये किताब, इसमें हमने क्या प्रयास किया है, उसकी थोड़ी सी झलकियां वो ऑथर देता है, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से वो प्रेजेंट करता है ताकि लोग उसमें रुचि रखे, उस किताब को खरीदे या फिर उसको पढ़े। तो उसका रीडिंग सेशंस होता है एंड इवन फॉर चिल्ड्रंस देयर इज बुक रीडिंग सेशन, ताकि बच्चों में ये किताबों को पढ़ने की आदत उसमें पक्की हो जाए। तो उनके लिए भी स्कूलों में लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स की तरफ से ये सेशंस रखा जाता है काफी अभी शहरों में, है ना। तो हम भी ऐसे क्या कर सकते हैं, सेंटरों में क्या कर सकते हैं, बुक रीडिंग सेशंस रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। आधे घंटे के लिए क्यों ना हो, कि हम टारगेट रख के रोज सोचिए हमारे सेंटर में 40 लोग आते हैं या 20 लोग आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से 3 लोग इंटरेस्टेड है तो भी कोई बात नहीं, हमारे टीचर बहन बहुत बिजी है कोई बात नहीं, हम उनसे परमिशन लेके हम पूछ सकते हैं, दीदी ये जो लाइब्रेरी में किताब रखा है हम यहाँ ही बैठ के पढ़ते हैं, 3-4 भाई बहन है, कोई एक निमित्त बनेगा, एक पढ़ेंगे फिर बाकी 3 सुनेंगे, है ना। उससे क्या होगा, जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको हम सहयोग देते हैं। सो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको उस तरीके से पढ़ना होता है कि उसमें रुचि आए, फिर वो अनुभव भी करे, इंटरेस्टिंग लगे, फिर उसको वो पूरे दिन उसका मंथन करे, उसके बारे में सोचे, फिर उसके बारे में वर्क करे, है ना। जैसे मुझे याद है जब भी बड़ी दादी, जानकी दादी ने, अभी प्रकाशमणि दादी जी, जब भी मुरली पढ़ते थे, मेरा अनुभव ये था कि जैसे मैं कभी अनुभव नहीं करती थी कि दादी जी मुरली पढ़ रहे, मुझे हमेशा अनुभव होता है जैसे बाबा आ गए, बाबा सुना रहे, और दादी के पास जैसे शी वॉज ऑलवेज फीलिंग बाबा विथ हर, सो इवन वी कुड फील बाबा देर, दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। एंड जैसे उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता था, लेकिन इतना रस मिलता था सुनने में, है ना। सो किताब इट्स जस्ट वर्जन्स, जस्ट लाइन्स, लेकिन हम उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से जो पढ़ नहीं पाते हैं उनके सामने रखते हैं तो ये ज्ञान भी इंटरेस्टिंग होगा, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगा, इतना सारा है जानने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए, सो दे विल ऑल्सो बी इंस्पायर्ड टू डू। ऐसे शायद वो भाई आएंगे, मुझे पता नहीं, मैंने एक भाई को इनवाइट किया है जो शांतिवन में ही रहते हैं, सेवाएं देते हैं, उन्होंने शुरू किया ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, तो वो शेयर करेंगे अपना अनुभव, तो कैसे उनको मदद मिला, कैसे उनको ये प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने शुरुआत किया। तो कौन कौन अभी इंटरेस्टेड है अपने अपने सेंटर्स में ऐसे बुक रीडिंग सेशंस के लिए? राघवेंद्र भाई आप आइए, कितने अभी जाके अपने सेंटर में लाइब्रेरी खोलेंगे? चलो आपकी दीदी लाइब्रेरी खोलने के लिए बोलेंगे जगह नहीं है, अरे इतने सारे किताब कहाँ पे रखेंगे, तो एटलीस्ट आप बोलेंगे दीदी आप नहीं लाओ, लेकिन हम लाके इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह दे दीजिए हम रखेंगे। कोई कोई किताब न भी रखे तो एटलीस्ट क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, अव्यक्त मुरली की कलेक्शन जरूर रखेंगे, और हमारे बड़ों की क्लासेस की किताब जरूर रखेंगे, और हिस्ट्री जो हमारी यज्ञ की हिस्ट्री है वो भी जरूर रखना है। तो एक मैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग राघवेंद्र भाई, मैं कुछ ये पढ़ना चाहती हूँ कि कैसे कैसे किताबें छपी हुई है स्पार्क में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो बनी हुई है, प्रोजेक्ट जो भी 96 से जिन जिन्होंने किया वैरायटी टॉपिक्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स किया, उसकी जो रिपोर्ट्स है 47 रिपोर्ट्स अभी तक स्पार्क में है, पब्लिश हुए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, और हिंदी किताबों की जो कलेक्शन है, मुरली की कलेक्शन हो या किताबें हो, 131 हिंदी बुक्स है उसमें सबके सब मैक्सिमम मुरली कलेक्शन बुक्स है एक्सेप्ट 40 इन दैट 130 सो अराउंड 190 ऑफ द सॉरी कितने 90 ऑफ देम आर मुरली कलेक्शन. तो आप जिस भी टॉपिक पर जानना चाहते हैं उसकी कलेक्शन आपको मिल जाएगी इजीली. आपको ढूंढने की जरूरत नहीं 69 से लेकर अभी तक इस विषय पर बाबा ने क्या बोला है तो इजीली अवेलेबल है. तो बहुत सारे मैं दिखाने के लिए बस एक एग्जांपल यहाँ पे लेके आई हूँ दिनचर्या. इसमें दिनचर्या के ऊपर बाबा ने हमारी अलौकिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए तो बाबा ने जब जब भी उसके बारे में बोला है उसका सारा कलेक्शन इसमें है. और सिर्फ दिनचर्या कैसे हो ऐसे नहीं, उसके राज भी इस दिनचर्या को फॉलो करने से हमें क्या लाभ होता है, उसके पीछे का राज क्या है, वो सारी चीजें एक टॉपिक के ऊपर बाबा ने अन्य मुरलियों में कुछ कहा होगा वो सारी कलेक्शन इसमें आपको मिलेगा. इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन लगभग 100 है. तो इसमें और भी कुछ किताबें हैं जैसे मनसा सेवा है, विघ्नों पर विजय, मुरली में आने वाली कहानियां और कहावतें. तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ मनसा सेवा विघ्नों पर विजय, ये मुरली कलेक्शन नहीं है लेकिन बहुत रिसर्च करके मनसा सेवा के ऊपर उसको कैसे किया जाए उस पर उन्होंने किताब बनाया. और किन्होंने बनाया किसको पता किन्होंने बनाया हाँ मनसा सेवा के ऊपर किन्होंने बनाया विघ्नों के ऊपर विजय के ऊपर माना कोई भी बना सकते हैं है ना. तो माता जी का आप डेडिकेशन देखेंगे वो गृहस्थ में रहते थे सब कुछ संभालते थे और गाना गाना उस पर भी बिजी थे वो कंपोजिशन जो भी था फिर भी उन्होंने टाइम दिया ये किताब बनाने में. तो हम में से कोई भी थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना. जब सरोजनी माता कर सकते हैं तो हम सभी भी कर सकते हैं. माता जी यहाँ पे है आए हैं नहीं आए हैं ओके शी इज नॉट कम है ना. ताली तो बजाई है सच ए ग्रेट सोल ना. कल गीत गाया था उन्होंने मतलब बीइंग देयर शी कुड राइट अ बुक सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट है ना. तो ये सारी किताबें स्पार्क से छपी हुई है. तो इसमें से कितने भी आप किताबें अपने लाइब्रेरी अगर बड़ी हो बड़ी सेंटर हो जितने किताब रखेंगे ये बुक रीडिंग सेशंस रखेंगे इससे आपको भी लाभ होगा और भाई बहनों को भी लाभ होगा. राघवेंद्र भाई जो है यहाँ पे शांतिवन में किचन में सेवाएं देते हैं मूलतः कर्नाटक से हैं इसलिए मैं परिचित हूँ भाई से. तो इंटरेक्शन होता रहता है पुरुषार्थ के ऊपर. तो एक बड़ी सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया तो मैंने सोचा ये बहुत बड़ी प्रेरणा है. सिंपल चीज है लेकिन प्रेरणा है. तो तीन चीजें मैं राघवेंद्र भाई से पूछना चाहती हूँ. एक तो ये जो आपने शुरू किया उसके आइडिया आपको कहाँ से आया, फिर जब शुरू किया उसका क्या रिजल्ट हुआ और उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करने में आपको क्या बीच में दिक्कतें आई और कैसे पार किया. राइट
ओम शांति. शरीर का नाम राघवेंद्र भाई है. मैं यहाँ शांतिवन में किचन डिपार्टमेंट में सेवा देता हूँ. यहाँ मधुबन में यहाँ शांतिवन में भी रहते हैं. तो क्योंकि यहाँ एक ही लक्ष्य है हम क्यों आते हैं यहाँ, तो हमें एक लक्ष्य था यहाँ आने को भी और सबको भी रहता है लेकिन उसी लक्ष्य को लेकर के पल पल लास्ट तक चलना वो भी हमारा बड़ा पुरुषार्थ है. लेकिन यहाँ जो है शांतिवन में यहाँ मधुबन में तो हमें पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ दीदिया कहो दादिया कहो सबसे छोटी है. जैसे यहाँ कई ग्रुप से छोटे छोटे ग्रुप से तो हर एक अपना रीति से पुरुषार्थ करते हैं. यहाँ कई ग्रुप से तो गुप्त रीति से करते हैं. लेकिन मैं आने के बाद लगभग 2012 में मैं आया, तो हम शाम को रोज मुरली पढ़ते थे, शाम को भी साकार मुरली हमें करते करते लगभग एक साल होने के बाद हमें विचार चलता था कुछ करना है, तो कुछ नया करना है, विशेष करना है। तो एक दिन अचानक ऐसे ही हम ग्रुप में बैठे थे, लगभग 10-15 लोग तो रहता ही है और कई बार 25 लोग 30 लोग तक हो जाता है। ऐसे बैठे बैठे एक संकल्प आया, तो क्या आया, तो विशेष करके मधुबन पांडव भवन में है, पांडव भवन में अभी भी कई सालों से वहाँ अव्यक्त मुरली का अमृत वेला के बाद वहाँ भी क्लास होता है, चलता है। हमें बस एक लाइन मिला, जैसे हम सभी बैठे थे, फिर हमें तुरंत विचार आया, क्योंकि हमें बीच बीच में आता था कुछ करना है, क्लासेस करना है, विशेष पुरुषार्थ करना, लेकिन क्या लक्ष्य लेके रखना है तो हमें इतना क्लैरिटी नहीं था। बट ये एक लाइन मिला, वहाँ भी चलता है, हमें क्यों नहीं करना है। और सबसे हम मुलाकात की, सबसे बात किया, अव्यक्त मुरली का जो वर्षन से बाप दादा का, ये सबसे अच्छा लगा, इसको लेकर के हमें आगे बढ़े। एक ही लाइन हमें शाम को मिला, फिर तो एक दिन बात की, फिर से हमें किस टाइम शुरू करना है, क्योंकि सारा दिन भी सेवा में बिजी रहते हैं, शाम को हो या रात को हो। फिर हमने फिक्स किया, जैसे यहाँ अमृत वेला होता है उसके बाद बहुत अच्छा टाइम है, और सब सेवा से भी उस टाइम कोई भी सेवा का बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। और सबसे अच्छा है जैसे योग के बाद इसका स्टडी करते हैं, उसका काफी असर पड़ता है, ये हमने डिस्कस भी किया, अच्छा भी लगा। थोड़े दिन के बाद हमने अव्यक्त मुरली का स्टडी शुरू की। हमने जब शुरुआत की थी ऐसे हम बुक उठा लिया था, 76 से शुरू किया था, 76-77 ऐसे पढ़ते गए, फिर हमें बीच में ख्याल आया तो हम इधर उधर एक एक पढ़ते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना है। फिर हमने 69 से शुरू किया, 69 से लगभग 80 तक हर एक मुरली को हमने 69 से 80 तक मुरली हमने 3 साल हो गए हमने शुरू करके, 80 तक लगभग पूरा की पूरा मुरली हमने पढ़ भी लिया, फिर उसमें भी एक एक मुरली दो दो बार भी हमने रिवाइज भी किए। फिर तो हमने बीच में ये लक्ष्य भी रखा, सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ पढ़ के बुक से एक पूरा हो गया रख दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर तो हमने क्या किया, अभी दोबारा रिपीट किया, अभी शुरू किया है 69 से, 69 70 70 का मुरली अभी तीसरा बार हम रिपीट कर रहे, और एक मुरली जैसा एक दिन पढ़ लिया वैसा नहीं, ओनली 2 पेजेस या 3 पेजेस भी होगा, एक एक मुरली लंबा भी है, 3 दिन कई बार 4 दिन भी हो जाता है। और उसमें भी हमने खास क्या किया, एक एक मुरली को लेकर के जैसा 3-4 पेजी है उसमें से एक एक हम मिल कम से कम 30-40 क्वेश्चन बनाए, उससे एक मुरली है तो 30-40 क्वेश्चन बनाए, उसको उल्टा भी कर सकते आगे भी कर सकते, ऐसे करके क्वेश्चन भी बनाया और आंसर भी हमने खुद निकाला। फिर उसके बाद हफ्ता में 2 बार हम टेस्ट एग्जाम लेते थे, जैसे 15 लोग है, हफ्ता में एक एक को एक एक भाई उससे क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा, 10 क्वेश्चन तैयार पेपर क्वेश्चन तैयार करेगा, फिर उसमें से सब एग्जाम लिखते थे। ऐसे हमने उस मुरली को, जो भी मुरली पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद रिवाइज करते हैं, फिर एग्जाम भी लिखा। ऐसे करने से जैसे पढ़ लिया, डायरी में भी नोट किया, बार बार रिवाइज किया। अगर और दूसरा हम ये भी करते थे, मैं जो भी किया हूँ दूसरे भाई को देते थे, फिर वो हमें प्रश्न पूछते थे, हम दूसरों से प्रश्न, ऐसे करके हमें लगभग पूरा मुरली लाइन टू लाइन, जैसे आप कहा भी पूछो कोई भी वर्ड पूछो हमें जैसे बुद्धि में प्रिंट हो गया, ऐसे हमें क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेशन किया। और इतना भी लक्ष्य नहीं पढ़ के हमने बंद कर दिया, जैसे एक मुरली पढ़ते हैं, दो पेज का पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं उसका अगर 15-22 लोग है उसमें अगर 3-4 पॉइंट भी होता है, हरेक से अपने अपने सबसे अपने अपने विचार से उसका भी मंथन किया, क्वेश्चंस भी पूछा, उसका आंसर भी किया, ताकि मुरली पूरा स्पष्ट हो बाबा ने किस भाव से बताया है, क्या बताया है। क्योंकि पढ़ लिया रख दिया समझ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए इस मुरली को अच्छी रीति से आज जैसे पढ़ा, सारा दिन में भी अभ्यास किया, और जस्ट नेक्स्ट डे जब मिलते हैं पहले पूछते हैं कल का मुरली क्या क्या था, क्या क्या अभ्यास किया, एक बार दो बार ऐसे रिवाइज करके फिर हम दूसरा मुरली को आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम करते करते ऐसे अभी भी चल रहा है, और इससे क्या फायदा हुआ एक्चुअली, जैसे लगभग ट्रैफिक कंट्रोल कर,
नहीं नहीं अभी 525 है, ट्रैफिक कंट्रोल है, किसी का फोन बज रहा है, सो वी हैव टू एंड अप इन 1 मिनट।
और इसका क्या रिजल्ट मिला एक्चुअली, पहले यहाँ पे आने के बाद है ना, जो विशेष ब्राह्मणों का फाउंडेशन है अमृत वेला, तो अमृत वेला यहाँ में आने के बाद भी लगभग 4 बजे उठते थे, कभी बीच में थोड़ा लेट हो गया या 3:30 ऐसे उठते थे, बीच बीच में थोड़ा आगे पीछे होता था, लेकिन हमने जब से अव्यक्त मुरली का शुरू किया है लगभग 3 साल हो गया है, तो मेरा 365 डेज में लगभग 1 दिन मिस हुआ है, 3 o'clock एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट 3 o'clock मेरा उठना है, क्योंकि हमें 15 दिन जब से हमने शुरू किया था मुझे 15 से 20 दिन थोड़ा सा मुझे, क्योंकि अमृत वेला के बाद रेस्ट करते थे, तो थोड़ा सा मुझे 15 दिन 20 दिन थोड़ा सा दिक्कत पड़ी, लेकिन जैसे हमने शुरू किया उसका टेस्ट बढ़ा, उसका भल, एक एक वर्षन सुनते 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 हमारा जैसे कपाट खुल गई, और एक एक मुरली सुनते सुबह इतना जबरदस्त हमारे में जैसे एनर्जी भर जाता था, और दूसरा है जैसे ऐसे ही महसूस होता था डेली बाबा हमारे सामने आकर के हमें मुरली सुनाते हैं, जैसे 15 दिन में 20 दिन में बाबा से मिलते हैं, लेकिन रोज हमें वो महसूस होता था ऐसे, तो एक एक अव्यक्त मुरली का इतना जबरदस्त, एक तो जब से हमने शुरू किया तब से मैंने मिस नहीं किया, अमृत वेला भी हो, एक्यूरेट भी हुआ, और अव्यक्त मुरली का भी, ये स्टडी हमने जैसे शुरू की तब से अभी तक, और अभी ये है हमारा लक्ष्य, जैसे पढ़ लिया रख दिया लाइब्रेरी बना दिया, नहीं यहाँ पूरा लाइब्रेरी बनाना है, 40 साल का जो भी है यहाँ लाइब्रेरी बनाना है, ऐसे मेरा विचार है, ऐसे अभी भी जो भी साल का है आधा घंटा मिल गए तो पूरा का पूरा साल का एसेंस यहाँ फिस्ट हो गया है, लेकिन उसका यूज भी कर रहे है, लेकिन आगे बहुत करना है, तो ये लक्ष्य लेकर के आगे चल रहे है, तो सब हर एक ये भी ट्राई किया तो अच्छा रहेगा, आप भी कर सकते हैं, वैसे स्पार्क हमेशा में तो स्पार्क मतलब स्पार्क ही है तो अव्यक्त मुरली सबके लिए अच्छा सा स्पार्क है, अगर ले लिया तो सारा एसेंस, और उसमें और एक खास मैंने देखा बाबा ने क्या क्या राज बताया है, जैसे हमने हर रोज जैसे कंटिन्यू करते हैं तभी बाबा,
अभी चाय ब्रेक है 6 से 7, फिर गीता दीदी जी का क्लास है, फिर नुमा शाम योग है, उठने से पहले 1 मिनट के लिए बैठेंगे सभी भाई बहने। राघवेंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसलिए उनको बुलाया कि कंसिस्टेंसी इज नॉट एन इजी थिंग, एक दिन भी मिस ना हो, रेगुलर चले, ये आसान बात नहीं है आजकल, है ना, तो ये सुनने से हमें भी प्रेरणा मिले कि बेहद सेवाओं में रहते अगर वो भाई, पहले दिक्कतें आती है कोई भी चीज करने में, माया टेस्ट लेती है, सुस्ती आती है, बीमार पड़ते हैं, फिर भी हम करते हैं तो हम जीत जाते हैं, तो आई थिंक आई होप वी आर ऑल इंस्पायर्ड टू रीड बुक्स. थैंक यू. ओम शांति.